अपने पतियों के साथ में कभी मिलन ही नहीं हुआ, किंतु फिर भी समझते हैं कि हमारे वो पति हैं, कृष्ण हमारे प्रियतम, बस आज ही तक पंचात। अभी
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाकृतन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने बहुरति हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश राधाकांत तत्कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णांशदेवी प्रणमामि। आदेविका कुहर गदगद यात्रवाचा जाचे निपत्त भूवि दंडवतो अस्या प्रसादम बुद्धस्य जनश्रुतित्वा गन्धर्विकेतो गणे अंगश्यामलिमिच्छताधिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जड्डं जावुटरुचि साङ्गितदतं पट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसत्तामाभिरामं राधास्कन्दनिवेशितो जलेन ध्यायेन् ताम्। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये चित्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणं। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय परभक्ताय यं प्राप्यजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरहका पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनयतु सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तन्मय माम्।
शिल जी गोस्वामी और श्री चक्रवर्ती ठाकुर स्वकीय एवं परकीय विचार भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने विचार दे, ये दोनों वास्तविक विचार एक ही हैं, दोनों में केवल एक तत्व की दृष्टि से एक रस की दृष्टि से विचार है, दोनों विचार मिलने पर ही पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बतलाया गोलोक में भगवान की लीलाएं हैं, स्वकीय भाव से गोपियों के साथ में क्रीड़ाएं करते हैं, इसलिए वहां पर ऐश्वर्य होता है। और वही गोलोक के अंत प्रकोष्ठ वृंदावन में गोकुल नहीं, गोलोक के अंतर्गत ब्रज कहो गोकुल कहो, यहाँ पर गोकुल सब जगह कह रहे हैं इसके लिए प्रकट के, और उसको गोलोक ही कह रहे हैं। इसलिए गोलोक के अंतर प्रकोष्ठ ब्रज या गोकुल में गोपियों का शब्द लीला ही चरम लीला, और यही माधुर्य लीला कहलाती है। दोनों जगह में अभिमान काम कर रहे हैं, वही अभिमान इस गोकुल की लीला में प्रकट लीला में मूर्ति धारण कर लेता है, जैसे जन्म लीला ने मूर्ति धारण कर लिया उतना अभिमन्यु गोवर्धन इत्यादि ने मूर्ति धारण कर लिया, अगासुरी इत्यादि ने मूर्ति धारण कर लिया। गोलोक के अंतर्गत जो ब्रज है वही नित्य सिद्ध है एवं माइक प्रत्यय से सर्वथा अति तरस पीठ है। गोलोक का यहाँ तात्पर्य ब्रज से। गोकुल के अंदर जो गोलोक के अंदर जो गोकुल है अप्रकट लीला वाला है वो नित्य सिद्ध और माइक प्रत्यय से माइक मिश्रण से माइक विश्वास से सर्वथा अतीत एक रस पीठ है, इसलिए वहां अभिमान से ही रस प्रवाह सिद्ध होता है। वात्सल्य रस वैकुंठ में नहीं है, ऐश्वर्य की ऐसी ही गति है, केवल वहां पर दास्य है। यहां तक कि रामचरित लीला में भी वो दास ही तक है, वहां पर शुद्ध दास है और वहां पर मिश्रित रूप में वात्सल्य और सख्य कोई शुद्ध रूप में नहीं। ये केवल ऐश्वर्य के कारण ऐश्वर्य की गति ही ऐसी, जहां ऐश्वर्य होगा वहां प्रभु और दास का संबंध हो जाएगा, जहां ऐश्वर्य होगा वो होगा और जहां पर ऐश्वर्य नहीं होगा नर्वत लीला भाव होगा वहां पर सख्य वात्सल्य और मधुर तीनों। जहां पर मान लिया कि बेटा खूब ऐश्वर्य से भर गया, खूब ऐश्वर्य पुण्य स्थिति में पहुंच गया, राष्ट्रपति बन गया, मैयाबाग गांव में है, साधारण परिवार के, अब वो लोग जब दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आएंगे अपने बेटे के पास में और उसका विपुल ऐश्वर्य देखेंगे और देखेंगे बड़े बड़े लोग सब लाइन में खड़े हैं उनको दर्शन करने के लिए, भेंट करने के लिए, तो उसका भाव कैसा हो जाएगा?
कोई सा जगह ना जाएगा,
वो बेटा जैसा भाव नहीं रह करके ऐश्वर्य भाव हो जाएगा और उसका भी ऐसा ही होगा और बाप भी ऐसा ही यदि होता ना स्टेटस का, अभी राष्ट्रपति होता पहले और फिर उसका बेटा ये राष्ट्रपति हुए हैं तब उतना ही नहीं रहेगा क्योंकि वो सब देख चुका है। इसलिए कृष्ण का ऐश्वर्य देखते ही माता पिता गुरुजन जितने हैं सखा पत्नी सब दास्य भाव की पूजा है, इसलिए द्वारका कृष्ण यही सब भावना है। रामचंद्र जी में स्वकीय बतलाया जाता है, स्वकीय मधुर रस, जैसे द्वारकाधीश में स्वकीय मधुर रस कहा जाता है किंतु वहां पर दास्य ही प्रधान है ही नहीं है। वो द्वारका में कुछ है, यहाँ की कृष्ण की महिषियों को मान भी होता है और महाभाव तक की स्थिति में पहुंच जाती है किंतु और सब जगह वैकुंठ में कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना है, परंतु मधुर्यमय गोलोक में अर्थात ब्रज में इस रस के मूल अभिमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, बस अभिमान है। क्या? मैं इनकी पर किया आनंद जसोदा प्रत्यक्ष हैं किंतु जन्म व्यापार वहां नहीं है, किंतु ऐसा भी हो सकता है कि वहां एक ऐसा प्रकोष्ठ हो जहां पर कि जन्म व्यापार है, ऐसा असंभव नहीं है। भगवान की अघटन घटन परदेशी योग माया के प्रभाव से ऐसा कोई भी ऐसी यहाँ की लीला नहीं है जो आप किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकोष्ठ में विद्यमान हो। इसलिए जन्म के अभाव में नंद सूर्यशोदा का जो पितृ मातृत्व आदि अभिमान है वस्तुतः वो नहीं है परंतु अभिमान मात्र है। जैसे कल बतलाया था देवकी जन्म बाधो रस देखे लिए अभिमान ही मुक्त है। इस प्रकार श्रृंगारस में भी परुणा और उपपति अभिमान मात्र नित्य होने से कोई दोष की बात नहीं है, इसलिए उस रूप में अभिमान के रूप में नित्य होने पर कोई भी दोष की बात नहीं है अथवा वो शास्त्र के विरुद्ध भी नहीं है। ब्रज में जब गुलोक तत्व प्रकट होते हैं तो इसका ये तात्पर्य हुआ कि वहां पर अभिमन्यु गोवर्धन इत्यादि नहीं है, उतना कंस इत्यादि नहीं है, क्योंकि उनका भाव हो सकता है। उसमें प्रापंचिक जगत में प्रपंच में दृष्टि से उक्त दोनों अभिमानी स्थूल दिख पड़ते हैं। जब ये प्रपंच में वो लीला प्रकट होती है उसमें प्रापंचिक दृष्टि से दोनों अभिमान अपने स्थूल रूप में देखते हैं, किंतु उनको नहीं दिखाई देंगे जो नित्य सिद्ध है, उनके परिकर होकर क्या उनको नहीं दिखाई देंगे। जैसे नारद इत्यादि है वो क्या देखेंगे, उनको ये सब नहीं दिखाई पड़ेगा। वो देखेगा कि अरे ये तो परब्रह्म है, भगवान है, गोलोक बिहारी हैं, ये तो लीला ऐसा कर रहे हैं। जैसे भोग कुमार जब द्वारका में पहुंचते हैं, इसी जब इसको सांत्वना देने पर भी इसको सांत्वना नहीं होती तो कहते हैं कि हम लोगों से ऊपर है अधिकार का, जो इसमें भाव हम में वो भाव नहीं है। ये लोग उनको सब समय भगवान देखते हैं, कृष्ण को, उद्धव और नारद दोनों, इसलिए उनका उनके प्रति वह प्रेम भाव नहीं आता, नर्व संभव नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि हमसे उन्नत है। उनको सब समय देखते हैं, जैसे रामचंद्र के पास में वो पहुंचा गोप कुमार बसुरिया लेकर, बंदरों ने बसुरी छीन ली, द्वारका के राजकुमारों ने उसकी बंसुरी छीन ली और कहा जैसे ये क्या
देखा निकले पड़े,
इसलिए उनके लिए अलौकिक चीज लग रहा था, बेकार। ये गोप का जीवन क्या राजकुमार का जीवन होना चाहिए, उनको पता ही नहीं। इसलिए प्रपंच की दृष्टि से ये लीलाएं उसी रूप में दिख पड़ती हैं। इस प्रकट वहां पर तो जन्म नहीं, किंतु नंद जसोदा का पितृत्व मातृत्व अजो अभिमान वो जन्म लीला के समय इस गोकुल में प्रकट गोकुल में देखते हैं कि जसोदा जी का कितना 10 महीने का गर्भ था, 8 महीने का गर्भ रहा
अष्टमी मास,
और इसके बाद में ठीक उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ जिस समय में मथुरा में आधी रात के समय में देवकी के गर्भ से उनका प्रकट हुआ, और उस समय उनका यहाँ नाड़ी नहीं रही, वहां पर नाड़ी जुड़ी हुई रही इत्यादि, ये सब देखा वो अभिमान। और कृष्ण बच्चे से धीरे धीरे बढ़ते 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 वहाँ, कृष्ण वहाँ क्या करेंगे,
नित्य किशोर
वहाँ पर बढ़ेंगे कि नहीं, जन्म से छोटे छोटे से बच्चे होकर के बड़े 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 बढ़ते 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 बड़े हो जाएंगे, तो अनंत काल तक बढ़ते ही बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ेंगे। इसलिए नहीं, उनका नित्य किशोर रूप ही वहाँ है,
छोटे से बड़ा
उसी किशोर रूप में जसोदा जी पुत्रत्व की भावना आनंद जब बाबा करते हैं, सखा लोग उसी में उनके साथ में खेलते हैं। ये चीजें अभी समझ में नहीं आएगी, साधन करते हुए साधन के उच्च स्वभाव पर जाने पर कुछ कुछ आभास होगा और इसके बाद में उपलब्धि होगी। सिंगारस में भी गोपियों का जो प्रौढ़ाभिमान स्थूल रूप में अभिमन्यु गोवर्धन आदि के साथ में विवाह के रूप में प्रतीत होता है इस जगत में, उस जगत में नहीं। वास्तव में वस्तुतः गोपियों का पृथक सत्तागत पतित्व न तो गोलोक में है न गोकुल में, यहाँ तकल हुआ था, कहीं भी उनका कुछ दूसरा पति नहीं है, चाहे यहाँ चाहे वहां, किस विचार से, तत्व के दृष्टि से, किंतु रस विचार से वहां भी है यहाँ भी है, रस विचार से किंतु तत्व विचार से वहां भी नहीं है यहाँ भी। इसी दृष्टि से वो बतला गया है देवकी जन्मवाद, जन्मवास और देवकी जन्मवाद, इसलिए शास्त्र में ऐसा कहा गया है न जात ब्रज देवी नन पति भी ऐसा संगम, पतियों के साथ उनका कभी मिलन ही नहीं हुआ, अर्थात रसाचार्य रूप गोस्वामी ने लिखा उज्जवल रसमणि में, उज्जवल रस में दो प्रकार के नायक बतला गया, पतिश्च उपपतिश्च भेदादि विश्रुतम, पति और पति के भेद से नायक दो प्रकार होते हैं, जीव गोस्वामी ने टीका में लिखा पतिस्तु पूर्व नितानंद द्वितीय ब्रज नितानंद। जीव गोस्वामी ने इसी के टीका में लिखा पति पूर्व नितानंद अर्थात द्वारकावासी जो ये है वहां पर कृष्ण जो है वहां पर पति है द्वितीय ब्रज नितानंद। द्वितीय द्वितीय माने क्या उपपति ब्रज नितानंद यही पर जीव गोस्वामी ने स्वीकार कर लिया। ये टीका से उनको पकड़ रहे हैं। देखो जीव गोस्वामी का ये विचार है जो द्वारका में वो पति हैं और वहां पर ब्रज में उपपति हैं इसलिए जीव गोस्वामी जी ब्रज में उपपति के रूप में ही पति भाव को स्वीकार कर रहे हैं। ये उनका अपना मत है और जब किंचित लिखितम परेच्छया उसमें उपपति पति इत्यादि की उन्होंने लिखी है। अपने टीका के इन वचनों से ही जील गोस्वामी ने बैकुंठ और द्वारका में कृष्ण का पतित्व और गोलोक गोकुल में उनका उपपति स्वीकार किया है। गोलोक और गोकुल नाथ में उपपति के लक्षण संपूर्ण रूप से देखे जाते हैं। गोलोक और गोकुल में कृष्ण द्वारा अपनी आत्माराम ताता रूप धर्म का उल्लंघन करना होता है। कृष्ण द्वारा अपनी आत्माराम ताता आत्मारामता रूप धर्म का उल्लंघन होता है। कृष्ण आत्माराम है उनके अंदर में कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कोई भी इच्छा नहीं है? और कोई भी नया कोई नई क्रिया नहीं होगी आत्माराम चुपचाप बैठा है किंतु देखा जाता है कृष्ण सर्वत्र ही क्रियाशील है। आत्मारामता होने पर भी फिर वहां पर विविध विलास की इच्छा उनमें रहती है पीड़ा की इच्छा रहती है इसलिए वे धर्म का उल्लंघन करते हैं। गोपियों का नित्य प्रौढ़ाभिमान ही प्रौढ़त्व है वस्तुतः उसका प्रत्येक सत्तायुक्त पति न रहने पर भी केवल अभिमान ही वहां पर स्वकीय प्रक्रिया का भाव संपादन करता है इसलिए रागेणो उल्लंघन धर्महं। इसलिए माधुर्य पीठ में ही नित्य वो वर्तमान रहता है और कहीं नहीं। वही भाव इस जगत में जब कृष्ण की लीला प्रकटित होती है तो प्रापंचिक नेत्रों से वह प्रापंच जैसी दिखती है और मुक्त होने पर भी स्वरूप सिद्ध होने पर भी कुछ न कुछ माइक भाव जरूर है। क्यों इस जगत में कोई भी शुद्ध ऐसी भाषा नहीं है जिसमें शुद्ध परमार्थिक भाव को व्यक्त किया जा सके कुछ न कुछ माया का मल जरूर मिश्रित होगा ही जरूर होगा इसलिए भजन के द्वारा उन भावनाओं को शुद्ध करके भगवत तत्व समझने की चेष्टा होनी चाहिए बिना भजन के नहीं होगा। इसलिए गोलोक में गोलोक माने प्रकट लीला में स्वकिया परकिया रस का अचिंत भेद और अभेद दोनों अचिंत भेद अभेद भेद भी है अभेद भी है भेद नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता और भेद नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। उसी को चैतन्य चरितामृत में ना सो रमण ना सो रमणी दोनों एक हो गए पार्थिय सार जो स्वकीय निवृत्ति अर्थात विवाह विधि रहित रमण एवं स्वकीय सार जो पारकीय निवृत्ति रूप स्वरूप शक्ति रमण ये दोनों एक रस होकर के उभर वैचित्र के आधार के रूप में नित्य विराजमान है। परकीय भाव क्या है जहां पर स्वकीय नहीं है तो हो गया ना इसलिए परकीय सार जो स्वकीय निवृत्ति स्वकीय की निवृत्ति कर दिया हो गया पर किया वही सार अर्थात विवाह विधि रहित रमण यही है पर किया सार जहां पर की स्वकीय निवृत्ति है विवाह विधि रहित एवं स्वकीय सार स्वकीय का सार क्या है जो पाप की और निवृत्ति प्रक्रिया को निवृत्ति कर दिया कंध का दूर कर दिया और स्वरूप शक्ति रमण यही स्वकीय भाव ये दोनों एक रस होकर के भी उभर वैचित्र के आधार में नित्य रूप में विराजमान है। आइए साधन के द्वारा समझने की चेष्टा होगी किस लिए बतला रहे हैं लोगों की उसी में प्रवृत्ति कराने के लिए, अधिक लोभ लगाने के लिए ये सब कार्य हैं। तो जिनके अंदर में लोभ आएगा वो तो कुछ समझेगा, और लोभ नहीं आएगा तो वो क्या समझेगा, आधार ही नहीं है। आधार होना चाहिए। यदि ऐसा कहो योग माया जो कुछ प्रकाश करती है वो परम सत्य होता है, ये प्रकट लीला में ब्रज में योग माया ने दूसरे पतियों के साथ में गोपियों की शादी कराई, इसलिए परम सत्य है उनका विवाह। इसलिए जब आप विवाह कराया तो ये विवाह ही सत्य है, और इस भाव को ये प्रकट करती है प्रक्रिया भाव को योग माया ही, अर्थात उनके से विवाह हुआ। किससे?
दूसरे
और कृष्ण के प्रति उत्पत्ति भाव हुआ, ये योग माया करती है इसलिए परम सत्य हुआ। ये इस शंका को दूर करने के लिए कहते हैं। तत्जीव गोस्वामी का विचार यहाँ नहीं टिकेगा, इसके लिए कह रहे हैं। रसा साधन में जैसे अभिमानों की प्रतीति रह सकती है और उसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि वो निराधार नहीं है, किंतु जड़ बुद्धि में जो हेय प्रतीति होती है वह दोषयुक्त है। वह हेय प्रतीति शुद्ध जगत में है ही नहीं है, हेय प्रतीति है ही नहीं। वहाँ तो कोई प्रश्न, जब हमें लोगों के हृदय में यह प्रश्न नहीं उठता है, यह प्रश्न किसके अंदर में होता है? स्थूलवादी लोग हैं उनको। हमने सुना कि ये ठीक है, जी गोस्वामी रूप गोस्वामी का ये विचार है, महाप्रभु का ये विचार माने का जितनी, अब तक युक्ति को कोई नहीं लगाना है, कुछ जरूरत नहीं है, किंतु स्थूल बुद्धि वाले तर्क करेंगे, इसलिए इनके इसके लिए ये सब वस्तुओं की अवधारणा है। मैं तो साधारण श्रद्धालु लोग, एकनिष्ठ श्रद्धालु हैं, उनके लिए ये सब की जरूरत, तर्क और युक्ति नहीं। जी गोस्वामी ने यथागत सिद्धांत ही निर्णय दिए, सिद्धांत की बात कही। सिद्धांत भी अचिंत रूप से सत्य है, अचिंत माने वह है भी नहीं भी है, दोनों में भेद है, नहीं भी भेद है। जैसे कस्तूरी है और उसका गंध है ना, भेद है कि अभेद है?
भेद भी है, अभेद भी है।
मान लिया कस्तूरी नहीं रहने से कस्तूरी का गंध आएगा, इसलिए कस्तूरी में गंध है। आप कस्तूरी को यहाँ लेकर के रखते हो और वहां दूर पर वो गंध आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है वहां भी आ रहा है,
भेद है,
किंतु वस्तु तो वहां नहीं जाती है, तो इससे भेद कुछ हुआ। किंतु साथ ही साथ में ये देखो, जिससे कस्तूरी का गंध निकल जाएगा तो उसमें वजन कम हो जाता है कि नहीं? कस्तूरी का गंध जितना भी निकालो तो कस्तूरी का वजन कम होता जाएगा ना,
नहीं
नहीं निकलेगा, तो इसलिए भेद कहाँ हुआ? भेद नहीं है, जितना भी निकल जाए इसलिए वो दोनों, किंतु अलग रह करके भी अनुभूति होगी, इसलिए हम कहते हैं ये। इसलिए शक्ति की मूर्त और अमूर्त अवस्था पर बतलाया था। अमूर्त अवस्था में जो मूर्त नहीं है, प्रकटित नहीं है, तब उनमें सर्व शक्ति के रूप में नित्य वर्तमान है भीतर अंग के अंगों में, और जब वही बाहर में लीला विलास के लिए प्रकट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं मूर्त। राधा ललिता विशाखा सत्या नंद बाबा इत्यादि उस प्रेम के मूर्त विग्रह हैं,
अमूर्त रूप में आत्माराम,
अमूर्त मरम है आत्माराम, आत्मा के अंदर में वो है उसी में रमण कर रहे हैं, इसलिए आत्माराम। इसलिए केवल स्वकीय प्रक्रिया को लेकर के विवाद करना मिथ्या और बाट आडंबर पूर्ण है। जो लोग निरपेक्ष होकर के शिलेजी गोस्वामी प्रतिपक्ष की टीकाओं को अच्छी तरह से अनुशीलन करेंगे उनके हृदय में किसी प्रकार की शंका उठने की संभावना ही नहीं है। शुद्ध वैष्णव जो कहते हैं वो सब सत्य होता है। शुद्ध वैष्णव लोग जो कहते हैं, जीव गोस्वामी भी शुद्ध वैष्णव है और चक्रवर्ती ठाकुर भी शुद्ध, इसलिए ये लोग जो जो कह रहे हैं वो सभी सत्य है, समझने का भूल है। वो अपनी दृष्टि से उसको सत्य बतला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़े सत्यवादी हैं और उन्होंने कहा ये बड़े मिथ्यावादी नहीं है। इसी तरह उसके पक्ष प्रतिपक्ष उनमें नहीं होता, उनके वाक्य कला में कुछ रहस्य होता है, संतों के वाक्यों में कुछ अलग कला होता है। कला कैसे होता है?
प्रेम कला,
उनमें है या गोलोक वृंदावन में सखियों में जो देखा जाता है प्रेम कला, अथवा महाप्रभु के समय उनके परिकरों में किसी ने किसी के रूप में कुछ कला हो जाता है, वो तो किस रूप में है? उसमें कोई विशेष बात होती है। हम लोगों में कौन एक सन्यासी थे, प्रभुपाद जी के सन्यासी में, वो किसी पर बहुत बिगड़ जाएंगे, बहुत बिगड़ जाएंगे तो कहेंगे तुम मायावादी है, गाली नहीं, कोई दूसरा गाली नहीं। अब उनकी दृष्टि में मायावादी से और कोई बड़ी गाली नहीं हो सकती है कि नहीं है? मायावादी सबसे बड़ी गाली है। तो वो यही कहा, यदि किसी पर बिगड़ जाते कहते ये मायावादी, तू मायावादी, बस यही कहते। तो और परस्पर में विचार हो रहा है, क्या विचार हो रहा है? किसी तत्व को लेकर भी बात चल रहा है और उसके सुनने में कितने तरह के सिद्धांत सब पुलिस सुनने, अब दोनों में तो हो रहा है वाक्य कला, प्रेम कला, और मालूम होता है सचमुच में इनका तर्क और वितर्क चल रहा है और उसमें कितने सुंदर सुंदर सब सिद्धांत, वो अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, वो उनका प्रस्तुत कर रहे हैं और उसमें विचित्र भाव सब आ रहे हैं। श्रोता दोनों का विचार सुन करके उनकी बुद्धि भी बहुत ऊपर चली जाती है और तरह तरह के सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। आदमी के लड़ाई झगड़ा में, साधारण लड़ाई झगड़ा में क्या होगा? मारपीट होगा, पैसे के लिए और सब चीजों के लिए लड़ाई झगड़ा ये सब होगा, उन लोगों को इसीलिए होता है, उनमें मामला भी होता है तो इसी विषय का, मैं सेवा करूंगा तो मैं सेवा करूंगा, इसी रूप में होता है। इसको समझना बड़ा भारी कठिन है। जड़ बुद्धि संपन्न लोग शुद्ध वैष्णवता के अभाव में शुद्ध वैष्णवों के प्रेम कला का रहस्य न समझने के कारण उनके पक्ष विपक्ष का आरोप करते हैं। अद्वैताचार्य ने कहा आज मेरी जाति गई, न जाने कहा सात जगह का अन्न खाने वाला ये मस्करी साधु यहाँ आ गया। और मस्करी मैंने क्या, जिसकी जाति पाति का जन्म का कोई ठीक नहीं, अवधूत इनने कहा यहां से पागल आ गया और इसके साथ में हमको बैठा दिया और इसने लेकर के फेंक दिया, अपना प्रसाद हमारे पत्ता में आ गया, हमारा पत्ता भी
झूठा हो गया,
झूठा हो गया, इसको ज्ञान नहीं। अद्वैता महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी क्या करें? अरे ये तो बड़ा भारी अपराधी है, महाप्रभु महाप्रसाद को ये झूठा कहता है और इसे जाति जाना कहता है, तो इसको महाप्रसाद का कोई ज्ञान नहीं। अब देखो जो कितनी ऊंची बात है, उन्होंने भी उनकी प्रशंसा की भीतर से,
ब्याज स्तुति
और ये उसी को नित्यानंद प्रभु जी, अब फिर ये भी ब्याज स्तुति कर रहे हैं, जैसे महाप्रसाद कभी झूठा नहीं होता है। और की तो बात, दूसरे देश में यदि लाया जाए और हजार लोगों का छूना भी हो जाए, यहाँ तक कि कुत्ता उसको ले ले, उसके मुख से भी गिर जाए, तो उसको झूठा मत समझो।
सुस्कंग पुर्जी सितंग बापी नितंग बादु अदेश तो प्राप्तमात्र न
हो उसमें मत सोचो। अब कोई प्रदीप का जो ये है ना,
दीप
ठाकुर जी को प्रदीप दिया जाता है, उसमें भी ऐसा बुद्धि मत रखो जो इन्होंने ले लिया प्रसाद और इसके बाद में मैं लूंगा प्रसाद तो ये झूठा हो गया, ऐसा मत सोचो। इसलिए मैं ये कहता हूँ जैसे सामने से ही सबको दिखला करके ले कर, वो तो और भी महा 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 प्रसाद हो जाएगा। तब हम लोगों की धारणा है ना, अपने अपनी धारणा से ऐसा करते हैं जी, गुरु जी को पहले दिया जाए, फिर और प्राचीन वैष्णव को दिया जाए, उनका सम्मान दिखलाने के लिए, जूठा के लिए नहीं, वो तो उनके प्रति मर्यादा सम्मान दिखलाना है इस तरह से। इसलिए महाप्रभात प्रसाद यदि मान लिया कि एक निम्न श्रेणी निम्न वैष्णव उसको ग्रहण कर लिया, इसके बाद में वो जूठा हो गया, वो दूसरों को नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं। हमने तो सुना है और देखा भी है, सब वैष्णव लोग महाप्रसाद पा गए ना, ठाकुर जी का प्रसाद, और पत्ते में से चिपके से जाकर उठा करके, इसलिए प्रसाद में कभी ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए महाप्रसाद में जो ये जूठा है, और ये महाप्रसाद कच्चा है और पक्का है, खबरदार ऐसा भाव नहीं रखना। मैं कच्चा प्रसाद नहीं लेता, मैं पक्का प्रसाद लेता। इसका मतलब है क्या, अपराध के वैष्णव के महाप्रसाद के प्रति वो अपराधी, स्थूल दृष्टि वाला व्यक्ति। इसलिए ठाकुर को निवेदित, प्रसाद जहां कहीं हो उसको सिर पर धारण करके उसको ग्रहण करो, चाहे वो कच्चा है पक्का का भेद मत रखो, जूठा है कि क्या है, किसी से छू गया है ये भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम लोगों पर महाप्रसाद की क्रिया नहीं होती, क्योंकि ये अपराध के ऊपर में गड़बड़ हो जाता है। तो गोपीनां तत्पचिनां च, इस राग पर चंद जाई के श्लोक की वैष्णव तो सिंटो कमी जो विचार दिया है वैष्णव भक्ति इन्होंने जीव गोस्वामी ने जो विचार दिया है, श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी ने उसे अपने सिर पर रख लिया है, और चक्रवर्ती ठाकुर जो कह रहे हैं वो लोग गोलोक वृंदावन में नित्य वो सब है। यदि गोलोक में जो भगवान की लीलाएं हैं उसके संबंध में कोई भी विचार करने के समय में महाप्रभु और उनके अनुगत गोस्वामी के दिया हुआ एक द्वारा दिए गए एक उपदेश को सब समय स्मरण रखना चाहिए। जब भी विचार करेंगे तो ये विचार करेंगे जो भगवान निराकार निर्विशेष निरंजन अव्यय अनादि नहीं, वो जड़ातीत विलास स्वरूप है, वो विलास युक्त है, निर्विशेष ने उनका कोई विशेष ही नहीं है, ऐसा नहीं मत समझो, कोई क्रिया नहीं है, ये तो मायावादी अद्वैतवादी शंकरपंथी लोगों का ऐसा ऐसी धारणा है, देखते हैं कि यहाँ पर इतनी विचित्रता है इसलिए उनमें नहीं है, नहीं तो एक ही समान हो जाएगा, इस डर से ऐसा कहते हैं, किंतु बात ऐसी नहीं है। जो माया के प्रभाव से कृष्ण का रूप है, बड़ा ही सुंदर रूप है, सबसे सुंदर रूप है, बड़े मधुर हैं और लीलाओं से विलास से युक्त हैं, इसलिए वो निर्विशेष नहीं है। इस जगत में अच्छी अच्छी मधुर चीजें हैं प्रसाद के रूप में दिया गया, तो अद्वैतवादी सन्यासी क्या करेगा, कहे ये सब मिथ्या है, और सबको घाट मिला करके एक ऐसे रगड़ देगा, घोट देगा, और घोट करके खा लेगा, कहे सभी एक है,
तो खाएगा तो वो भी एक है ये भी एक है,
उसमें रबड़ी का स्वाद और चटनी का स्वाद, वो पकौड़ी का स्वाद, कढ़ी का स्वाद उसको नहीं मिलेगा, वो सबको एक साथ में रगड़ करके एक कर दिया और पी गया पानी डाल करके, उनमें कोई विचित्रता नहीं है। और भगवत भक्त क्या करते हैं, कृष्ण को नाना प्रकार की चीजों को रसास्वाद करा करके एक एक चीज का रसास्वादन करते हैं, उनको आनंद नहीं होता, इस जन्म में भी दुख है पर जन्म में भी उनको दुख है, वैराग्य का जो दुख है इस जन्म में भी उनको है और अगले जन्म में भी उनको दुख है। आप वैष्णव लोग ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी का प्रसाद वस्त्र, ठाकुर जी का प्रसाद सब कुछ ग्रहण करके इस जन्म में भी सुखी रहते हैं और उस जन्म में भी सुखी रहते हैं, बड़े आनंद में जीवन लाभ करते हैं। इसलिए इनको सब इस हाथ में भी लड्डू है, उस हाथ में भी, उनको इस हाथ से लड्डू नहीं पाए पाए को छोड़ देते हैं और उस जन्म में तो ही है ऐसा। इसलिए निर्विशेष बाद में और द्वैत बाद में ये सब चीजें नहीं है। कृष्ण सब प्रकार की जड़ा की विशेषताओं और विलासों से भरपूर है, इसी का नाम है विलास। लास माने शोभा होना है, विलास में विशेष रूप से शोभा युक्त उल्लसित रहते हैं सब समय, नाना प्रकार के लाशों से, लाश माने यहाँ उल्लास, नाना प्रकार के आनंदों से भरपूर रहते हैं कृष्ण, और उनके भक्त लोग में वो सब चीजें आती हैं। भगवत रस विभाव अनुभव सत्य व्यभिचारी इन चार प्रकारों की चिन्ह में विचित्रतापूर्ण सामग्रियों के द्वारा परम आस्वादनीय रूप में गोलोक और वैकुंठ में नित्य विद्यमान है। इसकी व्याख्या हम लोगों ने बहुत पहले की है। गुलों का यह रस, चीनी केवल दे दो किसी को खिला दो तो मीठी लगेगी, रस नहीं बनेगा। मनुपात के रूप में पानी देकर उसे पतला कनाकर उसमें केवड़ा नींबू गुलाब जल भी दे दो, केवड़ा भी दे सकते हो, और उसमें कते मरीच का पूरी इत्यादि दे करके रोप रसाला बना करके अद्भुत टेस्ट बन जाएगा। तो ये ब्रजरस जगत में ब्रजरस के रूप में प्रतीत होता है। इस गोकुल रस में जो कुछ देखा जाता है वह सब गोलोक रस में विशद रूप से है, और यहाँ पर विशद रूप में नहीं है, कुछ दिनों के लिए है, यहाँ की अनुभूति बीच बीच में बंद हो सकती है, इसलिए नित्य अनुभव करने के लिए गोलोक वृंदावन में इसका आस्वादन जरूरी है। इसमें बाधाएं हैं मात्रत्वक इत्यादि, शरीरगत दृष्टिगत बहुत तरह के भावगत सब तरह तरह की कठिनाइयां हैं, उनसे संपूर्ण से मुक्त होकर के अनंत काल के लिए सदा के लिए नित्य काल के लिए वहां पर आस्वादन होगा। यहाँ पर कैसे होगा, कभी कभी होगा, बाह्य होने पर नहीं होगा, अंतर्भाव रहने से होगा। इसलिए लोग गोलोक वृंदावन में जाना चाहते हैं सिद्ध अवस्था के बाद में। यदि गोकुल ही और गोकुल एक है, गोलोक और गोकुल, तब तो जाने की जरूरत क्या, जाने के लिए इसलिए जरूरत नित्य आस्वादन के लिए। जो कुछ है वो सब सनातन गोस्वामी की कृपा है। यदि भगवतामन नहीं लिख करके जाते तो ये सब ग्रंथ इत्यादि नहीं होते। रूप गोस्वामी का ये कोई भी ग्रंथ ही नहीं होता, वही मूल है
समस्त ग्रंथ, सब ग्रंथ नहीं होते।
इसलिए नगर नगरियों का विचित्र भेद, उस रस विचित्रता, भूमि नदी पर्वत गृह द्वार कुंज गाय प्रभृति समस्त गोकुल उपकरण ही यथाजथ समाहित रूप में गोलोक में अवस्थित है, इसलिए सब कुछ वहाँ है, वही से इस जगत में उतरता है, प्रकटित होता है। जड़ बुद्धि वाले व्यक्तियों के कि उनके संबंध में जो जड़ प्रकृति रहती है वह गोलोक में नहीं है, वहां पर नहीं है, वहां पर वो ऐसा व्यक्ति जा ही नहीं सकते हैं कभी, अनुभव क्या करेंगे, जाएंगे नहीं, वहां पर तो शुद्ध लोग जाएंगे, माया से भी शुद्ध शुद्ध जो रहता है वहां पर, जड़ी शरीर जड़ी आंख जड़ी त्वक स्पर्श मन बुद्धि अहंकार कुछ नहीं होता है। विचित्र ब्रज लीला में अधिकार है इसके गोलोक की पृथक पृथक स्फूर्तियां होती हैं। विचित्र ब्रज लीला में अधिकार के भेद से बासल्य वाले सख्य वाले दास वाले मधुर रस वाले, मधुर में भी कितने कोटि कोटि भाव हैं, इसलिए अपने अपने अधिकार के अनुसार में भाव की स्फूर्ति होती है। उन विविध स्फूर्तियों के कौन कौन से अंश माइक और कौन कौन से शुद्ध हैं, इस विषय में स्थिर सिद्धांत होना कठिन है। कोई कोई कहते हैं कंस जो है वो कंस का मरना ये माइक ही लीला है, कहे जोग माया के द्वारा यदि ये प्रकटित है तो माइक कैसे होगी, माइक नहीं होगी। चैतन्य महाप्रभु जी ने चटक पर्वत को वहां के समुद्र को गोवर्धन और जमुना नदी के रूप में देखा, वहां पर पेड़ों को देखा वृंदावन के चिंतामणि पेड़, तो महाप्रभु देख रहे थे ये गलत हो जाएगा,
ये तो गलत नहीं होगा।
कोई कहता नहीं उन्होंने उसमें उद्दीपना उनकी हुई
सचमुच
तो इसलिए अपने अपने अधिकार से कोई महाप्रभु जी की उद्दीपना है और कोई कोई उनको सत्य संकल्प होने के कारण उनको नित्य सत्य मानने के लिए बात है, अपने अपने अधिकार के अनुसार। और कुछ लोग कहेंगे ये झूठ बात है, एकदम झूठ बात। इसलिए वो लोग कहते हैं जो गोलोक में ये सब नहीं है, अधिकार से तरह तरह की स्फूर्तियां होती हैं। उन विविध स्फूर्तियों के कौन कौन से अंश माइक और कौन कौन से अंश शुद्ध हैं, ये कहना बड़ा कठिन है, एक सिद्धांत कहना बड़ा कठिन है। चैतन्य शिक्षा मृत में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उन लीलाओं का एक लिस्ट दिया है, 28 या 29 या कितने हैं, और उसमें बतलाया ये नित्य लीलाएं हैं, ये नैमित्तिक लीलाएं हैं। और फिर उनमें बतलाया कि उसी के द्वारा भी ये सिद्धांत होना कठिन है। कृष्ण की कोई लीला भी माइकी नहीं है, न कोई माइक भाव है। शुद्ध दृष्टि वाला देखेगा जो सब जितनी लीलाएं हैं वो सब ठीक है, अधिकार के भेद से ऐसा होगा। किंतु सोचना चाहिए जो उनकी समस्त लीलाएं हैं नित्य हैं। भक्तु चक्षु भक्ति आंख वाले प्रेमांजन के द्वारा क्या है, प्रेमांजन क्षुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदय की विलोकयंती श्याम सुंदर तो जितना ही यह भक्ति प्रेम के अंजन के द्वारा शोधित होगी उतना ही वस्तु की प्रतीति होगी। प्रेम का अभाव होने पर ये चीजें नहीं देख सकती हैं कृष्ण को, कृष्ण सामने खड़े होने पर भी नहीं दिखेंगे। इसलिए शोधित हृदय में क्रमशः विशद स्फूर्ति होगी, इसलिए भजन करने की जरूरत है। वहां की बात तो कह दी किंतु समझने के लिए भजन करना पड़ेगा। कैसा भजन करना पड़ेगा, रूप सनातन रघुनाथ दास को स्वामी जी को स्वामी ने जैसा भजन किया, न खाने की चिंता, न पहनने की चिंता, न रहने की चिंता, न शरीर की चिंता, न शारीरिक चिंता, दिन रात भजन में चिंतन कर रहे हैं। इसलिए तर्क की कोई आवश्यकता नहीं। गोलोक तत्व अचिंत भाव में है, ऐसे अचिंत भाव को चिंता के द्वारा तत्वितर करने से भूसा कूटने के समान में कोई भी चीज पैदा नहीं मिलेगा, सब निष्फल होगा। ज्ञान चेष्टा से उपरत रहो, ज्ञान के द्वारा समझ लेंगे ये मत समझो, पढ़ लिख करके उस चीज को समझ लेंगे ऐसा भी मत समझो। यदि ऐसी बात होती तो हमारे दोनों आंखों के अंध हमारे गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज कैसे समझ लेते, कैसे संभव था। हाँ, वैष्णव की सेवा करते 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 उनकी कृपा से इसको समझा जा सकता है। पहले मुख्य और गौण रहेगा भी हरियाणा, इसके बाद में हरि नाम के हरि कथा के द्वारा परमार्जी चित्त में वो हरि नाम मुख्य होगा। इस प्रकार से चलना, नहीं तो कुछ दिनों के बाद में हरि कथा नहीं होगी, नाम भी छूट जाएगा, सेवा भी छूट जाएगी, सभी कुछ भक्ति भी छूट जाएगी। जितने अधिक रूप में हम हरि कथा का सेवन करेंगे शुद्ध वैष्णव के मुख से, हमारी बुद्धि उस चीज को धारणा कर सकेगी, अन्यथा नहीं, नाम इत्यादि के प्रभाव से। इसलिए नाम कैसे शुद्ध हो, हरि कथा कैसे हमको मिले, वैष्णव का संग कैसे मिले, जैसे हरिदास ठाकुर जी ने क्या किया, इस बंगाल को छोड़कर के बेनापुर में आए अद्वैताचार्य का संग के लिए, उस समय महाप्रभु जी का प्राकट्य नहीं हुआ, हरिनाम 3 लाख करते और संग किसका करते, उनके संग में रहने हरि कथा श्रवण करते। अद्वैताचार्य हैं कौन, ये महाविष्णु, यदि ब्रह्मा को, यदि हरिदास को ब्रह्मा भी मान लिया जाए, प्रहलाद भी मान लिया जाए, तो इनसे श्रेष्ठ कोटि के, उनका संग पा करके शुद्ध रूप में हरि नाम करते 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 और हरि कथा सुनते सुनते उनके संग में रह करके, या इसलिए सिद्धि हम लोगों को भी इसी प्रकार से वैष्णव के भाव हमारे अंदर में कैसे आए, संक्रमित हो, उनको प्रसन्न रखना, प्रसन्न रखेंगे तभी उनके भाव में संक्रमित होंगे। इसलिए वैष्णव की प्रसन्नता या भगवान की प्रसन्नता या गुरु की प्रसन्नता को भक्ति का एकमात्र कारण कहा गया। भक्ति कैसे आएगी, साधन भजन से उतनी नहीं आएगी। क्या भक्त पद जल आर भक्त
भक्त पद आर
भक्त पद जल
भक्त भक्त
से यही तीन साधन है, ये सबसे। इसलिए ज्ञान चेष्टा से उपरत रह करके ज्ञान की चेष्टा करेंगे, इधर उधर देख करके ज्ञान पढ़ाएंगे, ज्ञान का भी विकास होगा और भगवान की भक्ति हो जाएगी। यदि ऐसा होगा तो फिर ऐसी महिलाएं हैं या ऐसे लोग हैं जिनको ये सब ज्ञान त्यान कुछ नहीं, उनके लिए क्या होगा, तो भगवत भक्ति नहीं होगी। नहीं, ज्ञान नहीं होगा ये बात ठीक है, किंतु भगवत भक्ति से ऊपर है, ये हो जाएगी, अवश्य होगी। इसलिए भक्ति चेष्टा के द्वारा प्रेम पूर्वक कुछ भी है भगवान को समर्पण कर दिया, यही तो भक्ति होगी। इसमें चित्त निर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, भगवत भक्ति में अपने आप भक्ति ही चित्त को निर्मल बना ले। ज्ञान में पहले चित्त को निर्मल बनाना आवश्यक है कर्मार्पण इत्यादि के द्वारा, शुद्ध कर्मों के द्वारा, किंतु भक्ति में ये सब की जो जहां पर जिस अवस्था में वहीं से भक्ति कर सकता है। जिस विषय को ग्रहण करने के अंत में निर्विशेष प्रतीति का उदय होता है, भक्ति बार में उसका प्रत्याग करना जरूरी है। निर्विशेष प्रतीति का माने निर्विशेष भाव, अर्थात भगवान निराकार है, उनमें प्रेम नहीं है, वो आत्माराम है, सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा भाव जिसमें उदित हो ऐसे भावों को छोड़ देना उचित है। क्या होना चाहिए, भगवान के प्रति हमारा भक्तों के प्रति प्रेम बढ़े। इसलिए भक्त लोग जो वशिष्ठ नहीं पढ़ते हैं उसका अनुशीलन नहीं करते, जो वशिष्ठ नाम के एक पुस्तक, उसमें जोर से वैराग्य करना इत्यादि है। भगवान निराकार और ये संसार झूठा है, कैसा स्वप्न के समान, इसको त्याग करना चाहिए। वैष्णव में ये सब नहीं, जितनी भी चीजें हैं सभी सत्य हैं, भगवान की सेवा के उपकरण हैं, इसलिए इन सब वस्तुओं के द्वारा भगवान की सेवा करो, ये विचार। जो कुछ तुम्हारे पास है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या, पत्र पुष्प तुम्हारे घर में जो है कुछ भाव है, एक कपड़ा हम पहनने के लिए लाए, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, आपने उसको पहन लिया प्रसाद के रूप में, भूख लगी है जो कुछ है लेकर के ठाकुर जी के चरणों में तुलसी देकर के निवेदन कर लो और ये प्रभु का प्रसाद हो गया, आप उसी से जीवन धारण करो। भक्ति में कोई भी क्लेश नहीं है और उनमें त्याग में महान कष्ट भी है, लाभ भी कुछ नहीं। इसलिए वैसे साधन भजन में मत जाओ। माइक प्रतीति शून्य प्रत्यरस अतीव दुर्लभ है, गोलोक लीला में उसका वर्णन है, उसी का अवलंबन करके रागानुगा भक्ति साधन करेंगे। हम लोग वो सब नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग उसी का अवलंबन करके रागानुगा भक्त भक्ति साधन भक्त साधन करेंगे, रागानुगा भक्त ये सब साधन करेंगे। ऐसा करने से सिद्धि पर अधिकतर उपाधि मूल तत्व को प्राप्त, कोई मत करो रागानुगा का नाम लो मत लो नहीं तो अपवित्र हो जाएगा, ऐसा नहीं, यदि रागानुगा नाम लिया तो पवित्र हो जाएगा, ऐसा नहीं। जड़ बुद्धि संपन्न व्यक्तियों की पार्थिव चेष्टा में भक्ति बहुधा जड़गत विधान में बदल जाती है, जड़ बुद्धि को दूर रखने की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा लक्ष्य करके हमारे तत्वाचार्य श्री जी गोस्वामी ने उत्कंठित होकर के जिन विचारों का उल्लेख किया है उसका सार शुद्ध ग्रहण करना ही शुद्ध वैष्णव होता है। आचार्य की अवज्ञा करते हुए मतांतर स्थापन करने का प्रयत्न अपराध का होता है, इसलिए जी गोस्वामी पर शुद्ध भक्ति रखते हुए रागानुगा भजन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के विचारों का आदर। आज यहाँ पर समाप्त हुआ, कल से हम लोग फिर वो करेंगे वीरद भगवता वीरद भगवता में का बचा हुआ जो श्लोक है श्रीमद भागवत संबंधी उनका हम लोग पठन करेंगे।